श्रीराधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्विता नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिनी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्तारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कंतो राधा कंतो नमस्तुते तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणामामि हरि प्रिये वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यः वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्याद्वैत गदाधर शिवा सदि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। मॉर्निंग का दूसरा पॉइंट क्विक पॉइंट
मति विभ्रांत आपने बताया, जिससे मति जब किसी का भ्रमित हो जाता है तो हर चीज वो उल्टा देखने लगता है। अपने दो एग्जांपल दिया था, एक तो पढ़ाई से संबंधित जो कहीं पास नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, बार बार एग्जाम फेल हो रहा है तो यही सोचेगा पढ़ाई लिखाई करने से कोई लाभ नहीं है, कितने लोगों ने पढ़ाई किया, किसी ने सुसाइड किया, किसी जीवन में बहुत संकट आए तो मैं भी अब पढ़ाई छोड़ देता हूँ। दूसरा उदाहरण दिया, जब हमें दोस्त दिखाई देने लगता है तो फिर यहाँ पे रहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे अंदर मति में यानी कि मेंटेलिटी में कुछ अर्जुन जैसे व्यक्ति के मन भी कमजोर हो गया
तब स्थिर हो सकते। अर्जुन का तरह व्यक्ति का हृदय में स्थिर था, हमारे जब उल्टे देखना शुरू करते इसका तो हमारे
भी हो सकता
मति भ्रम हो गया। इसीलिए खुद को सिद्धांत के ऊपर ज्यादा
भरोसा
नहीं रखना, इसलिए गुरु वैष्णव के ऊपर सब कुछ छोड़ना ही अच्छा है। और यदि आप पॉइंट है
इंद्र के लिए बताया था टेक्स्ट 11 में कि दुर्योधन पहले विश्वपितामह ग्लोरीफाई करता है तो फिर बाद में बोलता है कि आप सभी इनको भी थोड़ा रक्षा कीजिएगा, और कहता था कि आनंद ने रूप धारण दिया था वो डिस्ट्रीब्यूशन में उनको
प्रशंसा, सबको प्रशंसा करना जरूरत है। हो सकता है कुछ थोड़ा ज्यादा काम है लेकिन सबको इम्पोर्टेंस देना जरूरी है। और
भगवान ने ओरिजिनली पहला श्लोक ये पहला अध्याय का 25 नंबर
गीता में दुर्योधन का नाम नहीं है, यद्यपि जो तीसरा श्लोक है वहां पे दुर्योधन ने बोलना शुरू किया लेकिन गीता इस पवित्र ग्रंथ में दुर्योधन का नाम नहीं डाला।
उपाचो नहीं होना चाहिए,
दुर्योधन उपाचो नहीं
है। गीता इतना गुण था उसका नाम दुर्योधन उपाचो होना ठीक नहीं। धृतराष्ट्र एक बार पूछा ठीक है लेकिन ज्यादा से ज्यादा उनका नाम भी नहीं होना चाहिए। वीडियो करेंगे
अर्जुन को मोहित करने के लिए भगवान ने उनके संबंधियों के सामने जाके रथ को खड़ा कर दिया जिससे अर्जुन उससे मोहित हो जाए।
जन्यवास प्रभु ने प्रार्थना किया था कि मायापुर में जो भी भक्त है मतलब लोग रहते हैं वो सब मुझे मेरा मतलब सब बेटा माने जिससे मैं मेरा अपराध क्षमा।
ये ब्रह्मा का प्रार्थना का इसी तरह
कल है, कल कहा था वहां छावनी में, कल छावनी में बताया था आपने शाम को छावनी में हुआ था ठीक है कल नहीं क्लास
आप ज्यादा स्पेस नष्ट मत करना कि भक्त लगा रहा है, थोड़ा क्लोज भी कर सकते हैं तो टेबल को थोड़ा। और कोई मनीष जल्दी बताओ टाइम नहीं।
अर्जुन रिमोट की वादा पर तो भी उसने ऐसी एक्टिंग की जैसे बदतमीजी की तरह ताकि वो सबका उद्धार कर सके।
तेरा नहीं है
का उद्देश्य
तेरा नहीं है। हम बताया था स्मरण या श्री हरि जो हर काम करने से पहले श्री हरि को स्मरण
सराजन में सबका मैं हिस्सा
जब भीष्म देव शंख बजाते हैं तो उस आवाज को बहुत ही कर्कश और बहुत ही तेज आवाज था, लेकिन जब भगवान और अर्जुन बजाते हैं तो उसको मधुर आवाज बताया गया।
जैसे आपने बताया था कि गोपाल वर्षपट में देखते हैं कि जो भीम का पेड़ भी बड़ा है, मतलब उधर अग्नि है कि और काम भी ज्यादा करते हैं।
जो ज्यादा खाना नहीं है, ज्यादा खाने से काम भी ज्यादा करना चाहिए। और ठीक है, लास्ट पॉइंट,
गीता गान की विशेषता बहुत सारी बताई थी, बताया था कि ये प्रभुपाद के तात्पर्य भी इसी में शामिल है, शॉर्ट फॉर्म में ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसा बताया था हृदय संशय जो दृष्टराष्ट्र वो श्लोक में ही था।
रेडी है पीपीटी? तुमको भरसा करता था, मैं मर जाता था।
इस बहुत अच्छा पॉइंट लगा था मॉर्निंग में कि किसी भी काम के स्टार्टिंग में श्री हरि का स्मरण करना।
तो अभी दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। दूसरा अध्याय का नाम है शांख योग, लेकिन प्रभुपाद ने इसका नाम दिया
गीता का सार।
ये 72 श्लोक है, इसके अंदर सार हम देखते हैं कि सार अर्थात सार है, सब कुछ है इसके अंदर। इसीलिए हम देखते हैं कर्म ज्ञान सब कुछ है। यह तक पहला अध्याय का जो विषाद है वो भी है इसके अंदर है। पहला अध्याय का विषाद जो, लेकिन दूसरा अध्याय का शुरू में क्या देखते हैं हम लोग, अर्जुन का विषाद देखे थे, इनडिसीशन उस तरह का प्रोजेक्ट का क्या हुआ अभी पहला युद्ध कहाँ खत्म हुआ था? अर्जुन ने धनुष बाण त्याग करके शोक संविग्न होकर रथ के ऊपर बैठ गया। तभी अर्जुन कह रहे हैं, देखी आय अर्जुन कृष्ण से अश्रु जले, कृपायाविष्ट होये भावित विकले, युद्ध क्षेत्र में अर्जुन एक इतना बड़ा वीर है, उनका उम्र कितना का 100 से ऊपर है, अभी रो रहा है आंख में आंसू, कितना एक शर्मनाक बात है। एक इतना एक वीर एक क्षत्रिय के युद्ध के तो आंख में आंसू, कितना शर्मनाक बात है। लेकिन फिर भी उनका आंख में जब आंसू देखा तो जो यदि इस तरह कोई देखेंगे, जिस तरह मानो आप पीते हैं, बच्चा को परीक्षा के भेजना चाहता है लेकिन नहीं जा रहा है, रो रहा है, तो बच्चा पीता मतलब क्या करेंगे, उसने क्रोध करके पीटाई करेगा तो सब खत्म हो गया। लेकिन पिता माता बहुत दुखी होते हैं, प्रेम से समझ नहीं, भाई जाओ जो क्वेश्चन आया सब इजी है, आंसर तुम्हारे सब सबे पास करेंगे, किसी को फेल नहीं होगा, समझाना। लेकिन क्रोध करेगा तो सारे खत्म। इसलिए कृपा आविष्ट है भावित विकल, ये स्थिति देखकर कृष्ण कृपाविष्ट हो गया, और कृपाविष्ट होकर कृष्ण बोलने लगा, कृपामय मधुसूदन कहिलो ताहारे, इति वाक्य बंधु भावे अति मिष्ट स्वरे। तो अर्जुन के स्थिति में देखकर कृष्ण ने मधुसूदन बहुत मीठा आवाज से अर्जुन को समझाने लगा, श्री भगवान कहिले। ये भगवत गीता का कृष्ण का पहला उपवाच है, लेकिन यह डाटा, यह ज्यादा उपदेश नहीं दिया, लेकिन उपदेश दिया
पीछे लिखा मधुर स्वरे,
मधुर स्वरे
डाटा भी मधुर में,
लेकिन वो डाटा भी मधुर स्वर में, लेकिन मैसेज बहुत कड़क था, लेकिन क्या बोल रहा है কিভাবে অর্জুন তুমি ঘোর যুদ্ধস্থলে অনার্যের শোকানল প্রদীপ্ত করিলে কিভাবে কেসে অর্জুন তুমি তুমি ঘোর যুদ্ধস্থলে ঘোর যুদ্ধস্থল অর্থাৎ ভয়ানক যুদ্ধস্থল কি ভয়ানক যুদ্ধস্থল আমি শঙ্খ বাজগে উসকে বাদ ठीक है शंख बाजने के पहले कुछ होता था तो एक अलग बात है लेकिन शंख बाज के उसके बाद यदि बोल रहा है तो ये तो एक शंख एक बहुत विषम परिस्थिति इसीलिए अर्जुन बोला है अर्जुन कृष्ण बोला ये घोर युद्ध स्थल में कैसे अनार्जर शोकानल प्रदीप्त कर शोकानल अर्थात क्या है शोक का आग शोक एक प्रकार आग जैसे आग में आग क्या करते हैं किसी को जलाते हैं तो शोक हृदय को जलाते हैं तो अनार्ज शोकानल अनार्ज अर्थात जो जीवन का मूल्य नहीं समझता है उसको कहते अनार्ज तो तुम कैसे इस तरह अनार्ज की तरह शोक तुम्हारा कहां से उत्पन्न हो अकीर्ति अस्वर्ग लाभ होइबे तुम्हार শ্রীচি বন্ধু ছাড়ে অযোগ্য আচার আর যদি তুমি যুদ্ধ নেই নেই করো দু চিজ তোমার ফায়দা হবে এখানে অকীর্তি আর অসর্গ অকীর্তি অর্থাৎ অকীর্তি অর্থাৎ অপমান কব যদি যুদ্ধ নেই করো কি যদি যদি তুমি নেই মারেগা তুমি যুদ্ধ নেই করোগে যদি জিও রয়ে তো অকৃতি আর যদি মরে যাও গে তো অস্বর্গ তো যুদ্ধ না করলে কাজ দুই ফল হে জিন্দা রাখলে সে অপমান মরলে সে নরক তো কি বিস্তার আছে সিদ্ধান্ত তুমি লে রা অস্বর্গ অকৃতি লাভ হইবে তোমার শিশি বন্ধু ছাড়ো এই অযোগ্য আচার শিশি বন্ধু তুমি মেরা বন্ধু মেরা বন্ধু ইস্তরা আচরণ করে নপুংসক নহ পার্থ একই ব্যবহার যোগ্য নহে এই কার্য বন্ধু যে আমার নপুংসক অর্থাৎ নপুংসক অর্থাৎ নপুংসক অর্থাৎ যে পুরুষ নেই আর স্ত্রী বি নেই নপুংসক নপুংসক যে পুরুষ বি নেই ও স্ত্রী বি নেই নপুংসক ক্লিপ নেই তো কৃষ্ণ বললা তুমি তো নপুংসক নেই হো অর্থাৎ তুমি যে জিস তার বাত করে নপুংসক কে তারা বাত করে হ্যাঁ আর মেরা বন্ধু হোক মেরা কই বদনাম হ্যাঁ বলে কৃষ্ণ কা বন্ধু ইস তরহ হালত হ্যাঁ মেরা তোমার সাক্ষাৎ মেরা ভি বদনাম হ্যাঁ তো যোগ্য নয় এ কার্য বন্ধু যে আমার মেরা বন্ধু হোক ইস তরহ আচরণ করা তুমি ঠিক নেই আর তুমি যে ইস তরহ যে বারে বারে বাত করে লাগলে হ্যাঁ আমি কতনা বৈষ্ণব হুম মেরা হৃদয় বহুত কোমল হ্যাঁ ইসলি মেয়ে বাত বলে নেই অ্যাকচুয়ালি বাত ও নেই হ্যাঁ ইয়ে তোমার হৃদয় কা দুর্বল হৃদয় দৌর্বল্য এই নিশ্চয় জানিবে ছাড়ো এই কর যুদ্ধ যদি শত্রুকে মারিবে এ তুমি যে সে জ্ঞানীকে তারা বাত করে না এ তোমার হৃদয় কা দুর্বলতা নিশ্চিত রূপে তোমার হৃদয় কা দুর্বলতা তো এ হৃদয় কা দুর্বলতা ছোড় দাও আর যুদ্ধ করো আর শত্রুকে মার ডাল তো অর্জুন করে এই মেরা হৃদয় কা দুর্বলতা ইতনা কঠিন কাম মে করা নিচে হৃদয় কা দুর্বলতা মধুসূদন কি আজ্ঞা করো তুমি মরে ভীষ্মদ্রোণ গুরুজন তারে মারিবারে মধুসূদন আপনার নাম মধুসূদন হ্যাঁ মধু নামক দৈত্য হত্যা কিয়া तो मेरा नाम गुरुशोधन क्यों देना चाहते हो आप? मधु नामक दत्त घोत्ते के इसीलिए मधुसूदन और मेरा नाम गुरुशोधन देना चाहते हैं। और मैं जब इस तरह बात बोल रहा हूँ मैं युद्ध नहीं करूंगा, आप फिर क्या बोल रहे हैं? ये मेरे हृदय का दुर्बलता। मधुसूदन किया क्या करो तुम? आप मुझको क्या आदेश कर रहे हैं? और भीष्म द्रोण गुरुजन उनको मारने के लिए पूजार योग्य जे तारा हन नित्य काल तादेर शरीरे बाण सुतीक्ष्ण धाराल। उनको तो चरण में फूल देकर पूजा करना चाहिए और आप कह रहे हैं उसको छाती में तीर लगाओ। जिनको फूल चरण में फूल देकर पूजा करना चाहिए उन शरीर में तीर से युद्ध करने के लिए बोल रहा है। और मैं जब बोला नहीं करूंगा और आप मुझको बोल रहा है मेरा हृदय का दुर्बलता। ठीक है, कोई आप बोल सकते नहीं अमुक गुरु ने ही किया अमुक ने ही किया, लेकिन मेरा गुरु तो साधारण कोई गुरु नहीं। मेरा दादाजी तो कोई साधारण कोई दादा नहीं। बहुत आदमी उनके दादाजी के मारा है, बहुत आदमी उनके गुरु मारा हो सकते, लेकिन वो साधारण गुरु साधारण दादाजी है। लेकिन मेरा जो दादाजी भीष्मदेव मेरा गुरु जी द्रोणाचार्य की साधारण कोई आम आदमी क्या? शुद्ध गुरु नहे तारा महानुभव जरा
शुद्ध गुरु नहे तारा महानुभव
हत्या करिता देरो सवारे शुद्ध गुरु नहीं है, ये महान व्यक्ति है और इन लोग को हत्या करना। तदपेक्षा भिक्षा भालो काटिया जाई बेकालो मिथ्या युद्ध कराओ अमारे इनमें से भीख मांगे खाना भी अच्छा है। तत् अपेक्षा भिक्षा भाल ये उनको मार के राज्य भोग करने के बजाय भीख मांगने खाना भी अच्छा है। काटिया जाए बेकाल भीख मांगने खाने से जीविका तो निर्वाह होगा, जीविका निर्वाह हो हिंदी में क्या बोलेंगे जीविका निर्वाह होगा। मिथ्या युद्ध कराओ मन इससे झूठ युद्ध करने जरूरत क्या? होता ये महाकाम विधि जे होइलो बाम युद्धे गुरु होता हवे इस तरह युद्ध ये हत्या छोटा मोटा काम नहीं, काम अर्थात काम वासना हृदय इंद्रिय तृप्ति वासना। इस तरह गुरु को हत्या करना कितना बड़ा काम वासना है। और मेरे सामने में वही उस तरह युद्ध आ गया। विधाता था भाग्य लिखन विधाता जो स्रष्टा मेरा बुद्धि नाराज है तो कि मेरा समन में इस तरह एक समस्या खड़ी कर दिया। ठीक है हिंदी खड़ी कर दी अच्छा जो युद्ध में गुरु को हत्या करना पड़ेगा। शेभ गुरु धीरो माखा कैमोने करिबो सखा
शेभ गुरु धीरो माखा कैमोने करिबो
से युद्ध के करिया कबे इस तरह जो भोग में राजा भी बन जाऊंगा वो राज्य को भोग करूंगा रुधिर माखा अर्थात खून से सना हुआ है, रुधिर अर्थात ब्लड, माखा अर्थात सना हुआ। तो इस तरह जो राज्य में भोग करूंगा लेकिन मेरा गुरु का खून से सना हुआ राज्य को भोग करना पड़ेगा, कैमोने करीब शाखा कैसे है शाखा में कैसे काम कर सकते। और इस तरह युद्ध पहले कोई इस तरह किया, ये युद्ध के कोरी ऐसे कभी अतीत में किसने इस तरह युद्ध किया? तो जब कृष्ण उत्तर नहीं दे रहा है, जब किसी को समझ में इस तरह युक्ति के बारे दिखाने लगेगा वो आदमी उत्तर नहीं दे रहा है, तो आपको सामने लगे क्या लगेगा? नहीं सोचेगा भाई
समझा,
हो सकता है समझा नहीं लेकिन और एक बात हो जाता, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, इस तरह भावना नहीं आ रहा है। जब कृष्ण पर कृष्ण के एटीट्यूड के कृष्ण तो हमने देख रहे हैं नहीं यू आर रॉन्ग, इस तरह मनोहर तो पहले डांट दिया। जब कृष्ण उनका पॉइंट से नहीं हिल रहा है तो सामने लगा क्या लगेगा? कन्विंस नहीं, मैं हो सकता मैं ठीक नहीं हूँ, सामने वाला जब नहीं हिल रहा है तो आगे हमको क्या लगेगा?
अभी मतलब उसको कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो बोला वो सही है।
नहीं पहले तो कॉन्फिडेंस था
पर अभी उसको लग रहा है।
हाँ अभी जब अर्जुन कृष्ण जब नहीं हिल रहा है कृष्ण उनका पॉइंट में स्ट्रिक्ट है तो लेकिन आगे उनको लग रहा है
मैं भी गलत हो सकता
हूँ, हो सकता मैं भी गलत हो सकता हूँ, इसलिए कह रहा है बुझीते पारी ना भालो কোথায় গরি মা হল
বুঝিতে পারি না ভাল কোথায় গরি মা হল
কোন কার্য জুয়ায় আমায়
কোন কার্য জুয়ায়
আমায় জুয়ায় অর্থাৎ যজ্ঞ আমায় অর্থাৎ মেরে ইয়ে तो बुझीते पारी ना भालो मैं ठीक से नहीं समझ पा रहा हूं कहा मैं कहा गलत गलत हो रहा है मेरा कि कौन कार्य मेरा करना चाहिए क्या युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए मैं ठीक समझ नहीं पा रहा हूं कहा गलती हो रहा है मैं वो भी नहीं समझ पा रहा हूं। कि बायामी जयो कोरी कि मायामी निजे मोरी
कि बायामी जयो कोरी
দুই নৌকায় আমার না চায়
দুই নৌকায় আমার না চায়
এক তো মেরা যুদ্ধ করনা চাই কি নাই করনা চাই এ তো নেই সমঝ পা রহা আর যে যুদ্ধ করনা চাই যুদ্ধ মে জয়লাভ করনা চাই কি মরনা চাই ও ভি নেই সমঝ পা রহা। आप जो युद्ध करने के लिए बोल रहा है क्या मरने के लिए कि जीतने के लिए कौन सा वो भी नहीं समझ पा रहा हूँ। इसलिए एक नदी में जो दोनों गांव में दो पैर देगा तो उनकी हालत क्या होगा? कोई आप गया कभी नदी में दो नाव में दो पैर दिया तो क्या हालत होगा?
हाँ
नाव इस तरह एक चीज है दो नाव का पैर नहीं दे सकते। तो अर्जुन बोला मेरा स्थिति अभी उस तरह हो गया, मेरे लग रहा है दो नाव में पैर दिया अब इन्हें पर कौन नाव में जाओगे नाव की वो नाव में और दो नाव उसको नचा रहा है नदी में तो नाव इस तरह टलमला करते हैं और फिर दो नाव में दो पैर है तो अभी मेरा स्थिति क्या अभी मेरा वो स्थिति है। जो भी संस्कृत श्लोक में इस तरह नहीं है लेकिन प्रोपर हाँ ये उदाहरण के साथ वो चीज समझा रहा है। যাদেরো মারিয়া রণে বাঁচি বসে অকারণে
যাদেরো মারিয়া রণে বাঁচি বসে অকারণে
তারা সব আমার সম্মুখে
তারা সব আমার
मारकर मैं राज्य भोग नहीं करना चाहता हूँ जिसके प्रति मेरा प्रेम है अभी वो लोग मेरा समन में युद्ध करने के लिए आया। धृतराष्ट्र पुत्रगण আর যত বন্ধু জন মরিলে সে হবে মোর দুঃখ राष्ट्र का पुत्र और जो बंधु जितना है ये लोग तो मैं इनका प्रेम करता हूँ ये लोग मान ले मेरा दुख होगा फिर वो लोग मेरा समन में आ गया फिर कृष्ण को कोई उत्तर नहीं दे रहा है तब अर्जुन अभी फुल कर्ण हो जाए तो मैं ही गलत हूँ अर्जुन तो अर्जुन को अर्जुन कृष्ण को आत्मसमर्पण किया কর্পণ দোষেতে দোষী মোহেতে হইয়েছি বসি
কর্পণ দোষেতে দোষী মোহেতে হইয়েছি বসি
স্বভাব হলো অপহত কার্পণ্য জনিত দোষকে কারণ কৃপণতাকে কারণ কৃপণতা প্রভুপাদ তাৎপর্য মে সমঝায় কৃপণ উনকা বিপরীতে ব্রাহ্মণ কৃপণ অর্থাৎ কঞ্জুস কঞ্জুস শব্দ কঞ্জুস কিসকে কথা হ্যাঁ জিসকে পাস মূল্যবান বস্তু ধন হ্যাঁ উপযোগ নেই জানতে অর্থাৎ যো মনুষ্য জীবন কা মূল্য নেই সমস্যা মূল্যবোধ নেই জানতে অর্থাৎ এ মনুষ্য জীবন কা সার্থক কিয়ে বিনা কৃষ্ণ ভক্তি নেই কর কর যো মৃত্যুবরণ করে ও কৃপণ তো অর্জুন অর্থাৎ দেহাত্ম অর্জুন এ প্রসঙ্গ পূর্বাদ এ শ্লোক কা তাৎপর্য মে কথা এক ইসকো উদাহরণ দিয়া কিসকে সাথ স্কিন ডিজিজ চর্ম রোগ কেউ চর্ম রোগ অর্থাৎ কি স্কিন ডিজিজ কি মেরা স্কিন আর আপকা স্কিন আমার ইন্ডিয়া সে উৎপন্ন হয় এসলে হাম ভারতীয় ভাই ভাই এ বেমারি হ্যাঁ স্কিন ডিজিজ এ দেহাত্ম বুদ্ধি হ্যাঁ কৃপণতা কঞ্জুসি এ ভাবনাকে কারণ অর্জুন যুদ্ধ নেই করা চাহতা অর্জুন খুদকে বেমারি সমঝ গিয়ে ইসলে বলা হয় এ কঞ্জুসিকে কারণ মোহগ্রস্ত হওয়ার কারণ স্বভাব হল অপহত 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 শব্দ অর্থাৎ এ পিণ্ডি অপহৃত অপহত অপহত নিকাল চুকা মেরে স্বভাব সত্যি সব যুদ্ধ করনা ও মেরা আন্দার ও স্বভাব কাম নেই কর মে যুদ্ধ নেই করনা চাহতা কেউ এ কৃপণা কৃপণতা দেহাত্ম বুদ্ধিকে কারণ ইসলিয়ে মে যুদ্ধ নেই করকে আপকো পাশ কে বল রা হুম নিজ ধর্ম ছাড়ি মুর জিজ্ঞাসি তোমারে কৃপা করি কর সংযত কৃপণতাকে কারণ মে খুদ কা ধর্ম ছোড় কর আপকো দৃঢ় রূপ মে জিজ্ঞাসা কর রা হুম তোমারে জিজ্ঞাসি দৃঢ় কৃপা করি কর সংযত আপ কৃপা করকে মুসকো সংযত কিজি অর্থাৎ আমি মে যে উল্টা পাল্টা প্রশ্ন কর রা হুম হ্যাঁ ইসকো উসকো সহি উত্তর দেকর শান্ত কিজি তুমি জানো হিত মোর হয়েছি মোহেতে ভোর
তুমি জানো হিত মোর হয়েছি মোহেতে ভোর
ভালো যাতে করো হো বিচারে
ভালো যাতে করো
আ जानते हैं मेरे लिए कौन सा अच्छा होगा, मैं मोहग्रस्त हो गया और मेरे लिए जो अच्छा होगा आप उस तरह आदेश दीजिए। हो इनु तो मारो शिष्य देखु कोश कोलो विश्व,
हो इनु तो मारो शिष्य देखु कोश कोलो विश्व,
शिक्षा दाओ ये यो प्रोपन्न रे,
शिक्षा दाओ ये
प्रपन्न रथ शरणागत, मैं आपका शरणागत हूँ। होइनु तुम्हार शिष्य, मैं आपका शिष्यत्व वरुण किया, सारे जगतवासी को मैं घोषणा करूं मैं आज आप मेरा बंधु नहीं है, आप मेरा आज गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, आप मुझको उपदेश दीजिए। देखी नाया मीजे अंध ताहे बुद्धि अति मंद,
देखी नाया मीजे अंध ताहे बुद्धि अति मंद,
शोकानलो निविवेकी भावे, मैं आंधा हूं, आंखों में आंधा नहीं, ज्ञान का दृष्टि भी मैं आंधा हूं, इसलिए मेरा हृदय में शोक का आग जल रहा है, मेरा पता नहीं है ये शोक कैसे, शोक का आग कैसे बुझे, बुझे बुझ जाए, समझा बुझ जाए। जे शोको जलायो मोरे इंद्रियादि सब पोरे,
जे शोको जलायो मोरे इंद्रियादि सब पोरे,
भव रोग तिरूपे घुचावे,
भव रोग तिरूपे घुचावे।
ये जो शोक है मेरा उत्पन्न हुआ, ये मेरे इंद्रियों को जला रहा है, जलाकर खाक बना रहा है, मेरे पता नहीं है ये जो मेरा भाव रोग देहात्म बुद्धि कैसे वहां से मुक्त होऊंगा मेरा पता नहीं है। जो दीपाई त्रिभुवन राज्य लक्ष्मी सुलोभन,
यदि पाई त्रिभुवन राज्य लक्ष्मी
सुनो मन, अशपत्न राज्य रो विका,
अशपत्न राज्य रो विका।
अर्जुन बोल रहा है ज्योति भाई त्रिभुवन, केवल ये दुनिया का राजा नहीं, ये स्वर्ग मर्त्य पाताल तीन भुवन का यदि मैं राजा बन जाऊंगा, राज्य लक्ष्मी सुलभन और इतना धन संपदा है, लक्ष्मी देवी स्वयं यदि विराज करेगा इस तरह संपदा, उतना ही केवल नहीं अशपत्न राज्य विकास, शत्रु विहीन यदि राज्य भोग करूंगा फिर भी, अर्थात मेरा तो आप युद्ध करने राजा बनने के बोल रहा है ये देश का, लेकिन ये देश नहीं, मेरा अभी जो शोक है हृदय में, यदि त्रिभुवन का राजा बनूंगा, लक्ष्मी देवी स्वयं विराज के इतना धन संपद यदि रहेगा और शत्रु मुक्ति दी राज्य इस तरह मिलने के बाद भी मेरा जो दुख उत्पन्न हुआ कभी शांत नहीं हो, इतना ही केवल नहीं, देवो लोके आधिपत्य तोमा के कोहिनु सत्य,
देवो लोके आधिपत्य तोमा के कोहिनु सत्य,
नाही हवे एशो को बिना,
नाही हवे एशो को बिना।
अर्थात अर्जुन बोल रहा है ये जो भौतिक जगत जितना कुछ है, स्वर्ग लोक का राजा बनना तक जितना कुछ है, मेरा हृदय में जो जो शोक उत्पन्न हुआ है ये कभी नाश नहीं होगा। इसका अर्थ क्या है, ये आध्यात्मिक गुरु के पास ज्ञान से होकर दूसरा कोई रास्ता नहीं, लेकिन हम से नहीं, मेरा ये परीक्षा पास कर दूंगा मेरा समस्या है, मेरा एक नौकरी मिल जाएगा, हाँ सर सैलरी डबल हो जाएगा, समाधान हो गया। हाँ एक मकान बना लेंगे बस, और कोई समस्या नहीं। बैंक में 10 लाख रुपए जमा कर दूंगा, और कोई समस्या नहीं। हम सोचते हैं इतना होने चाहिए बस। तो प्रभुपाद का ये बुद्धि गाधे की तरह बुद्धि, और एक पेड़ जाएंगे तो हम गाजर खा सकते। लेकिन वो पूरा जीवन देख रहा है कि कभी उस तरह नहीं मिल रहा है। लेकिन गाधे की तरह आदमी लोग सोचते हैं नहीं, एक नौकरी मिल जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगा, मकान बना ले, गाड़ी लेंगे, बस हमारा समस्या खत्म। नहीं, अर्जुन इतना शक्तिशाली व्यक्ति उन्होंने करा है, नहीं जब तक आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लाभ हो रहा है, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। उस आप जितना कुछ दोगे, त्रिभुवन को राज्य, संपदे सुखशाली राज्य और शत्रुहीन राज्य, जो कुछ मिलेगा, कभी भी ये सुख का शोक का विनाश नहीं होगा। इस तरह बोलकर अर्जुन बोल रहा है, लेकिन कृष्ण कुछ नहीं बोल रहा है। तो अर्जुन ने बोलना बंद कर दिया, मैं आज नहीं करूंगा, मेरा वस्तु तो पहले छोड़ दिया, अभी वाक्य भी छोड़ दिया। अभी देखो अर्जुन, कृष्ण आप जो कुछ करना है, अभी संजय इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अभी कृष्ण क्या करेंगे, संजय कहिले से कथा बोलिया गुरा केशव परतापी, ऋषिकेश निवेदिल जदिओ प्रतापी। ये कथा बोलकर गुराकेश अर्जुन प्रतापी, इतना शक्तिशाली है, यद्यपि जदिओ प्रतापी, यद्यपि प्रताप, प्रताप अर्थात बहुत शक्ति, यद्यपि बहुत शक्तिशाली है, फिर भी एक बात बोलकर अर्जुन क्या बोला, हे गोविंद मोर द्वारा युद्ध नहीं होवे, युद्ध छाड़ी से वीर रहिलो नीरवे। ये बोलकर गोविंद और मेरा द्वारा युद्ध नहीं होगा, ये बोलकर उन्होंने चुप हो गया। अभी कृष्ण का क्या होगा, यदि कोई इस तरह आपको समन्वय के आत्मसमर्पण करेंगे तो आपको कैसे लगेगा, कोई व्यक्ति आपको समन्वय इस तरह आत्मसमर्पण करे आपको कैसे लगेगा। यदि उनको आप कृपा करना चाहते हो आनंद होगा ना। आप मानो किसी को कुछ समझाना चाहते हैं, वो आदमी इस तरह आत्मसमर्पण करे तब आपको कैसे लगेगा, तो आनंद आएगा। ठीक है भाई, हाँ अभी उपदेश देने का समय आ गया। स्निग्धाशी मनोहर ऋषिकेश बोले, हे भारत अर्जुनेर सुनिया सकले, हे भारत अर्थात हे धृतराष्ट्र। संजय बोले हे भारत, हे धृतराष्ट्र अर्जुनेर सुनिया सकल, अर्जुन का इतना जितना सारे बात सुनकर स्निग्ध हसी मनोहर हंसते हुए कृष्ण बोलने लगा, युद्ध क्षेत्र सैन्य मध्य हसिया हसिया, उपदेश करें गीता विषण देखिया, युद्ध क्षेत्र में सैन्य के बीच में कृष्ण ने हंसते हुए भगवत गीता का उपदेश दे रहा है। और ये हंसी दो प्रकार हंसी होता है, स्मित हंसी और एक अट्ट हंसी, अट्ट हा 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 हा, इस तरह हंसी नहीं, ये हंसी तो थोड़ा वो आदमी को भी उनका अपमान बोध कर सकते, लेकिन यह स्मित हंसी तो थोड़ा दांत दिखाई देगा, शब्द नहीं होगा। इस तरह रूप गोस्वामी ने हंसी को 6 भाग भाग कर दिया। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे 6 प्रकार हंसी है प्रधान, कोई विभिन्न व्याख्या है, कोई 3 प्रकार तो है शब्द होगा, 3 प्रकार शब्द नहीं होगा। कोई बार दांत दिखाई दे कोई शरीर कापेगा इस तरह अलग अलग देखा है कौन प्रकार हाँसी है उसका अलग अलग नाम भी है। हाँ कृष्ण तत्व विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है हाँसी को बड़े रूप से विश्वास किया है। अभी भगवान कृष्ण उपदेश देना शुरू किया 11 नंबर श्लोक से श्री भगवान कहले असत्य विषय शोक करो तुमि
भी
प्रज्ञावाद भाष्य कार्य न कोनो धीर पंडित जे जन हय शोक नाही
तार
मृत देह नित्य आत्मा से जाने विचार। भगवान क्या कर रहे हैं असत्य विषय शोक करो तुम्हें वीर हे वीर जो विषय में शोक नहीं करना चाहते चाहिए आप वो विषय में शोक कर रहे हो और प्रज्ञावाद भाष्यकार ज्ञानी की तरह बातें कर रहे हो। ज्ञानी की तरह बातें कर अर्थ क्या है आप कोई आदमी को अरे आप पंडित की तरह बात करें इसका अधिकार पंडित नहीं है अतः मैं पहले से जानता हूं पंडित नहीं है लेकिन पंडित की तरह बात कर रहे हैं। यदि आप अरे आप डॉक्टर की तरह ड्रेस पहन लिया इसका अर्थ क्या है अरे डॉक्टर ने इस तरह ड्रेस क्यों पहन लिया तो ये स्वीट इंसल्ट है। तो प्रज्ञावाद हास्यकार जेनो कर दे लाख अलग आप बहुत बड़ा है ज्ञानी व्यक्ति की तरह लेक्चर लेकिन ज्ञानी नहीं ज्ञानी की तरह बात कर रहे हैं। पंडित जे जन है शोक नहीं का जो पंडित व्यक्ति तो शोक नहीं करते हैं मृत देह नित्य आत्मा से जाने वो तो जानते हैं शरीर मृत और आत्मा नित्य है इसीलिए वो शोक नहीं करते। अच्छा आप लोग साथ साथ उच्चारण करेंगे टाइम फिर खुलेंगे ना तो इसीलिए मैं थोड़ा आप थोड़ा क्षमा करना आपको बोलने का मैं चांस नहीं देगा अब मेरा बोलने का चांस है यदि चांस होगा लास्ट में तो आप बोलना आप लोग बोलना। तो 12 नंबर श्लोक में करना तुम्हें आमी जत राजा सम्मुखे तुम्हार তুমি আমি যত রাজা সম্মুখে তোমার রসব চিরনিত্য কর বিচার তুম মে জিতনা সারে রাজা তুমি আমি যত রাজা সম্মুখে তোমার তোমারে সামনে এরা সব চিরনিত্য কর বিচার এরা সব নিত্য হয় চিরনিত্য চিরনিত্য অর্থাৎ সর্বদা বর্তমান চিরনিত্য অর্থাৎ পারমানেন্ট শাশ্বত অর্থাৎ কিসকে বারে বললা হ্যায় कृष्ण कितना अशिक्ष रूप में आत्मा के आत्मा शब्द उच्चारण नहीं कर रहा है लेकिन जब कृष्ण ये बात बोल रहा है इसका अर्थ क्या है शरीर तो मरेगा लेकिन नित्य बोला तो किसको बारे बोल रहा है शरीर का मालिक के बारे में पूर्वे रा ना ही छिलो परे ना था कि वे मूर्खेर विचारे निश्चय जानी वे इस तरह नहीं है कि पहले नहीं था भविष्य में कुछ नहीं कभी नहीं रहेगा इस तरह सोचो मत इस तरह यदि सोचोगे तो वो मूर्खों का विचार है अर्थात तुम मैं जितना सारे राजा है सब अतीत में था अभी है और भविष्य में रहे वो कौन है देही देह का मालिक देह तो नाश होगा लेकिन रहेगा फिर कौन देही। तो कृष्ण कितना सूक्ष्म रूप में आत्मा के बारे में बोला लेकिन आत्मा शब्द उच्चार नहीं करके और कठिन कोई चीज बोलने के लिए उदाहरण के साथ बोलना चाहिए और उदाहरण इस तरह चीज देना चाहिए जो चीज समझ में आए उस तरह एक चीज उदाहरण देना चाहिए। इस तरह कोई उदाहरण देगा तो नहीं समझेगा तो फिर उस तरह उदाहरण देना क्या समझे बोले ओके देखने की इस तरह बोला डायनोसोरस का अंडा की तरह अंडा की इस तरह कोई उदाहरण देते समझ में आए। तो सबसे कॉमन जिनिस क्या है हाँ हमेशा देखते हैं कौन चीज देखते हैं
शरीर
दूसरा कुछ नहीं देख खुद का तो शरीर देखेंगे तो ये चीज सबसे कॉमन चीज हमारे समझ में क्या है तो इसीलिए वो चीज समझाने के लिए शरीर के साथ बोल रहा है और उसको देह बोल रहा है सबसे सरल भाषा से बोल रहा है और देह नहीं बोल कर रहा है देही शब्द बोल रहा है इस तरह शब्द बोल रहा है देही शब्द से पता चलता है देह का मालिक। तो देही शब्द बोल के कृष्ण एक दूसरा ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, देही अर्थात देहो का मालिक, देहो से अलग कोई वस्तु है। देहो देही भेद दुई नित्य अनित्य से कोमल जो गंजरा परिवर्तन जेई, देहो और देही भेद है, एक है नित्य और एक अनित्य, देहो अनित्य और देही है नित्य। और लेकिन देह का परिवर्तन किस तरह था, कोमार जौवन जरा परिवर्तन जी, देहेर स्वकार्य है देही नित्य रहे तथा देहांतर प्राप्ति पंडितेरा कहे। देहेर स्वकार्य, स्वकार्य खुद का काम, देह का काम क्या है, परिवर्तन होना, देह का धर्म ही है, देह का धर्म है परिवर्तन, ये देह का स्वकार्य है। देहेर स्वकार्य है देही नित्य रहे, हमारे सबके शरीर परिवर्तन हो रहा है लेकिन हम वो व्यक्ति है। इसीलिए जब शरीर परिवर्तन हो रहा है और सबसे जब बड़ा परिवर्तन जो होगा, एक शरीर से दूसरा शरीर देगा, उसको बोलता है देहांतर, तथा देहांतर प्राप्ति पंडित तेरा कहे। यह कृष्ण कितना इंटेलिजेंट, कितना बुद्धि के साथ दे रहा है, मृत्यु शब्द भी व्यवहार नहीं कर रहा है, उसका कृष्ण क्या शब्द व्यवहार किया, धर्म देहांतर, मृत्यु शब्द भी व्यवहार नहीं किया, कृष्ण व्यवहार किया कौन शब्द, देहांतर, तथा देहांतर पंडित रा कहे। तभी प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है तो समझ गया, लेकिन हमारे जो शरीर कोमार जौवन जरा में जो इतना तो दुख नहीं होता है, लेकिन देहांतर में तो दुख होते हैं, उसको कैसे हम समझे। तब कृष्ण बोलते हाँ थोड़ा तो दुख होते हैं लेकिन सहन करना चाहिए, जिस तरह शीतुष्ण सुख दुख इंद्रिय विकार इंद्रिय दास जा रहता है अधिकार, जिस तरह सर्दी गर्मी जो होते हैं कष्ट तो होता है, परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सहन करते हैं, के थर सर्दी से रोते हैं हम लोग नहीं, सहन करते हैं। इंद्रिय दास जो इंद्रिय दास उनको दर ज्यादा ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन ये सब अनित्य आएगा जाएगा, जिसका दिन होते हैं रात होते हैं, रात जब हो रहा है हम रोना शुरू करते हैं आदमी, चलो चलो अपेक्षा करो 12 घंटा पर फिर शुरू हो जाएगा, सब करते हैं। से सब अनित्य वस्तु आशी चली जाए सहिष्णुता मात्र गुण तहार उपाय, आशी चली जाए, आते हैं जाते हैं, लेकिन उसको सहन करने के एक ही तरीका है, कैसे, सहिष्णुता गुण, व्यथा नहीं दे जा रे अनित्य सब से जन बुझिल जान पुरुषार्थ वैभव। इस तरह चीजें जो आते हैं जाते हैं, जिसको जिसने इसको समझकर इसको सहन करते हैं, वो जीवन का मूल्यबोध समझ गया है। सम दुख सुख धीर अनित्य व्यापारे अमरत्व से पाए जीतिया संसारे। जो व्यक्ति इस तरह सुख दुख को इस तरह अनित्य वस्तु को समभाव में देखते हैं, वो व्यक्ति को बोलता है ये भौतिक जगत से दुख कष्ट से अमरत्व लाभ किया है। असत शरीर सत्ता नहीं तार नित्य सत्य जीव है मृत्यु नहीं जार। ये शरीर असत है, अनित्य है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है, आप जितना दिन कोशिश करो कभी टिकेगा नहीं, ये मर जाएगा, असत शरीर, ये कोई स्थायित्व नहीं है, लेकिन नित्य सत्य जीव है मृत्यु नहीं जार। लेकिन आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता, आत्मा शब्द व्यवहार किया नहीं, जीव नित्य सत्य उनका मृत्यु नहीं होगा और शरीर नाशवान, अर्थात जो चीज नाशवान उसके लिए शोक करना चाहिए। कृष्ण के तो सरल बात बोला, जो नाशवान वस्तु है वो एक दिन नाश हो जाएगा, जो नित्य वस्तु है वो कभी ध्वंस नहीं होगा। उभय विचार करी करिल निश्चित तत्वदर्शी से ही कहे जे ही हित। जो तत्वदर्शी व्यक्ति जो ज्ञानी व्यक्ति है ये जानकर ये अनित्य विषय में सुख नहीं करते, जो चीज ध्वंस होगा उनके लिए क्यों सुख करेंगे, और जो चीज परमानेंट नित्य शाश्वत है उनको उनको नित्य रूप में रखने के लिए कोशिश भी करेंगे, वो तो है। अविनाशी से बुझो सर्वत्र विस्तार जहार अभावे है देह महाभार। किसके बारे बोलना है? वही आत्मा के बारे बोला। आत्मा शब्द यूज व्यवहार किए बिना कृष्ण बोला है अविनाशी से बुझो सर्वत्र विस्तार। इसको जानो वो जो जो व्यक्ति जो जिस जीव के बारे बोला है वो अविनाशी है। केवल अविनाशी नहीं है सर्वत्र विस्तार। प्रभुपाद तात्पर्य में उदाहरण देता है, जिस तरह आकाश के एक कोने में सूरज रह का भी सारा जगत को प्रकाशित करते हैं, उसी तरह ये जीवात्मा हृदय में रहकर सारे शरीर को प्रकाश करते हैं। लेकिन जहार अभाव है देह महाभाव, जिसको जो चले जाने से शरीर क्या हो जाता है?
बोझ
होता है, महाभार होता है। मरने के बाद आदमी का वजन बढ़ जाता है। देखा कभी जो आदमी नदी में तैर रहा है मर के तो डूब गया, भारी हो गया। खोए नहीं जात के मारीते पारे अमरेर मार की बा करो बिचारे। इसे क्षय नहीं व्यय भी नहीं, वो आत्मा है अमर है तो उनको कौन मार पाएंगे। तो तुम क्यों भी सोच रहा है नहीं मैं नहीं मारूंगा, वो तो मरेगा ही नहीं, आप मारोगे किसे। इस तरह आत्मा के बारे मालूम कर। निश्चेष होया जावे एई जड़ देह नित्य आत्मा जानो भालो ना मरिबे केह। ये जो जड़ देह निश्चेष हो जाए, निश्चेष हो जाबे अर्थात निश्चेष अर्थात निश्चेष अर्थात कबल अंत में शून्य हो जाएगा, कुछ कुछ शेष नहीं रहेगा, कुछ बचा नहीं रहेगा। ये शरीर मृत्यु के बाद जलाने के बाद पता नहीं चला मिट्टी का दो तीन पर, इसको निश्चय अर्थात शून्य हो जाए, निश्चय अर्थात संपूर्ण संपूर्ण विनष्ट है। एक जड़ देह नित्य आत्मा जानो भालो ना मरी देखो, और आत्मा नित्य कभी मरेगा नहीं। एक ही बात हर श्लोक में बोल रहा है, घुमा के इधर में उधर में फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। विनाशी प्रमेय नहे आत्मा भालो मते सत्य बुझी द्रव्रत हो तो युद्धेते। विनाशी प्रमेय नहे आत्मा विनाशी नहे, आत्मा को विनाश नहीं होगा। प्रमेय अर्थात परिमाप, परिमाप नहे अर्थात आत्मा को परिमाप नहीं कर सकते, उसको विनाश भी नहीं कर सकते। भालो मते अच्छा तरीका के समझो कि आत्मा को परिमाप भी नहीं कर सकते, आत्मा को ध्वंस भी नहीं कर सकते। सत्य बुझी द्रव्य तो हो तो युद्ध, ये बात को ठीक से समझकर अभी युद्ध करने के लिए द्रव्रत हो जाओ। जे जन बुझे से आत्मा मरे जेते पारे अथवा जे जन बुझे आत्मा अन्य मारे। जे जन बुझे से आत्मा मरे जेते पारे, जो आदमी सोचते हैं हाँ एक दिन आत्मा मर जाएगा, लेकिन दूसरा आदमी यदि सोचेगा अथवा जे जान बुझे आत्मा अन्य मारे, कोई अरे दूसरा कोई आत्मा को मारेगा तो। उभय भ्रमात्मक किछु नहीं बुझे मरे ना मारे ना आत्मा जानो युद्ध जुझे। दो व्यक्ति भ्रमात्मक, दोनों ही गलत है। जो सोचते हैं जो बुझे आत्मा मरेगा, कोई सोचे अन्य दूसरा आदमी उनका मारेगा, तो दोनों ही भ्रमात्मा है, गलत है। इसलिए आत्मा का अभी संज्ञा दे रहा है। जन्म मरण नाई हयो नाई हवे नाई होये चिलो ताहा नहे आत्मा ओ जो नित्य शाश्वत পুরাতন নিত্য সত্য শরীরের নাশ নহে মৃত্যু। শরীর কা নাশ কে মৃত্যু নেই কাতে হ্যাঁ, শরীর কা নাশ তো মৃত্যু হ্যাঁ, লেকিন ইহা কৃষ্ণ কোন বসন বলা হ্যাঁ, আত্মা কা মৃত্যু নেই, জন্ম মরণ নেই, আত্মা কা জন্ম নেই, আত্মা কা মরণ নেই। কবি লাগতে ভাই তো জানতে বার বার কিয়া শুনতে, লেকিন বার বারই শুননা চাই, ইয়ে উপলব্ধি কা বিষয় হ্যাঁ। কি বার বার শুনতে হ্যাঁ, কি শুধু কবি একদিন উপলব্ধি হয়ে তো জীবন জীবন সফল। জন্ম মরণ নাই, হয় নাই হবে নাই, হয় নাই হবে নাই অর্থাৎ কে হয় নাই অর্থাৎ অতীত মে হবে নাই ভবিষ্যৎ মে, তো ইস তরফ অতীত মে হওয়া নেই ভবিষ্যৎ মে হবে নাই, হয়েছিল তাহা নয় আত্মা, অর্থাৎ অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ মে কবি বিস্তার নেই হবে, আত্মা কবি জন্ম লেগে আত্মা কবি মরে। অজ নিত্য শাশ্বত পুরাতন নিত্য সত্য শরীরের নাশ নাই মৃত্যু, আত্মা হয় অজ জন্মরহিত নিত্য শাশ্বত চির পুরাতন নিত্য সত্য বস্তু, তো শরীরের নাশ কো আত্মা কা মৃত্যু নেই কাতে। যে জন যে জেনেছে আত্মা নিত্য অজ অবিনাশী অব্যয় অজর আত্মা সর্বদিবানিশী, হামেশা কিলিয়ে সর্বদিবানিশী মিন্স দিন রাত সর্বদিবানিশী অর্থাৎ হামেশা কিলিয়ে অব্যয় অজর আত্মা, আত্মা অব্যয় অজর, অজর অর্থাৎ বুড়া পানি আত্মা। যে জেনেছে আত্মা নিত্য অজ অবিনাশী, যে আত্মা কো ইস তরহ সমঝ গিয়া হ্যায় আত্মা নিত্য অজ অবিনাশী অব্যয় অজর, সে কেন মারিবে অন্যে মূর্খের মতন, সে জানে নিশ্চিন্ত আত্মা মরে না কখন। তো যদি ঈশ্বর আত্মা কো সমঝ লেগা তো আদমি বলে গা আমি ওকে মারুঙ্গা নেই, অর্থাৎ অর্জুন কো সমঝা রা হ্যায় তুমি যদি আত্মাকে ইস তরহ সমঝোগে তো তুমি ইস তরহ বাত কবি নেই করো গে, তুমি যুদ্ধ নেই করুঙ্গা, তুমি আত্মা কে সমঝা নাই ইসিলে ইসি বাত করে, যাব আত্মা কো সমঝ যাওগে তব ইসিদের বাত নেই করোগে। তো এই সমঝানে কে লোক বহুত আর এক আচ্ছা উদাহরণ দে, যো উদাহরণ আর এক তো দু চিজ আমি দেখতে, এক শরীর আর উসকে বাদ হাম কে দেখতে হ্যাঁ কাপড়া, এই দু চিজ হাম হামারে লিয়ে কমন উদাহরণ, তো কাপড়া কে সাথ শরীর কে উদাহরণ দে রহে। পুরাতন বস্ত্র যথা ভঙ্গুর শরীর তথা, পুরাতন বস্ত্র যথা জিস তারা পুরানা কাপড়া ভঙ্গুর শরীর, উস তারা ভঙ্গুর শরীর অর্থাৎ বুড়া পাওয়ালা শরীর, এক ছাড়ি অন্য বস্ত্র পরে আপনা কে করতে জিতে পুরা পুরাতন শরীর ছেড়ে জিস তারা এক আদমি কে পুরানা কাপড়া সরকার নয়া কাপড় বানতে হ্যাঁ, পুরাতন বস্ত্র ছাড়ে নবীন বসন পরে, পুরানা বস্ত্র সরকার নয়া কাপড় বানতে হ্যাঁ, নবীন শরীর সেই ধরে উচি দ্বারা আত্মা পুরাতন শরীর সরকার নয়া শরীর ধরতে পাকড়তে হ্যাঁ, জীর্ণ শরীর ছাড়ি নবীন শরীর ধরি দেহি নব্য হয় পুনর্বার, ইস তরহ জীর্ণ শরীর অর্থাৎ পুরানা শরীর সরকার আত্মা নয়া শরীর ধারণ করকে নত নব্য দেহি নব্য হয় পুনর্বার, ফির আত্মা ফিরে নয়া শরীর, দেহ দেহি এই ভেদ শরীর দেহ আর দেহিকা এই অন্তর হয় তাহে বাকি বা খের ইসকে অন্দর দুঃখ কেউ করে হো, এ তো সমঝ গে না কাপড়া আর শরীর ইসকে অন্দর কিছু করে, ছাড়ো দুঃখ যুদ্ধ করিবার, দুঃখ ছেড়ে দাও যুদ্ধ কর, আর ঠিক সমঝা রে আত্মা কো অস্ত্রাঘাতে নাহি কাটে চিন্ময় শরীর অগ্নি না জ্বালায় তাহা শুনো বিজ্ঞ বিজ্ঞ, अस्त्र द्वारा नहीं काटे चिन्मय शरीर, चिन्मय शरीर अर्थात आत्मा को अग्नि ना जलाए तहा सुनो भिक्षु, आग से जलाए नहीं जा सकते, जल द्वारा नहीं भेजे वायु ना सुखाए, जल द्वारा इसको जल द्वारा उनको गीला नहीं कर सकते और वायु द्वारा उनको सुखा नहीं सकते। घात प्रतिघात सब जड़े तिजुआ, इस तरह घात आघात प्रतिघात ये शब्द आते हैं, ये अस्त्र से काटना, आग से जलना, पानी से गीला करना, हवा से सुखाना, ये जड़ वस्तु के साथ लागू होता है। अच्छेद जे आत्मा है अक्लिद अशस्य चिदानंद आत्मा नहे जड़ रसे पोष्य, सर्वत्र आत्मार गति स्थिर सनातन, अचल आत्मा नित्य अचल अटल आत्मा नित्य से नूतन। वही बात को इस श्लोक में फिर बोले, अच्छेद अर्थात छेदन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अक्लेद गीला नहीं कर सकते, चिदानंद आत्मा है जरे ये चित चिन्मय सचित आनंदमय, इसका ना जड़ वस्तु का लक्षण नहीं है, और आत्मार गति आत्मा का गति सर्वत्र स्थिर सनातन अचल अटल आत्मा नित्य सनातन, ये आत्मा का लक्षण बोला, अचल अटल अर्थात चिन्मय वस्तु के बाद संगत है, और आत्मा सर्वत्र गामी अवर अचल चलते नहीं, इस तरह चिन्मय वस्तु के बारे इस तरह गुण होते चिन्मय वस्तु, और जड़ का लक्षण जो काटा काट सकते जलाई जा सकते गीला कर सकते, काटा जला भिजा सुखा जड़े लक्षण, जड़े द्वारा व्यक्त नहे अव्यक्त कखन, काटना जलाना गीला करना सुखाना ये जड़ वस्तु का लक्षण है, ये जड़ वस्तु का लक्षण के द्वारा चिन्ह वस्तु का प्रकाश नहीं कर सकते। मन द्वारा चिंत है जड़े लक्षण, आत्मा जड़ वस्तु न है अचिंत कथन, मन के द्वारा चिंता का किसको चिंता कर सकते जड़ वस्तु को, तो मन द्वारा आत्मा को चिंता नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मा अचिंत अर्थात चिंता से परे, जड़ेर विकार है आत्मा अविकार, जड़ो आत्मा विभिन्नता सुनो बार बार, जड़ो का विकार होता है आत्मा अविकार, इसीलिए जड़ वस्तु और आत्मा हमेशा हमेशा के लिए अलग है। यथाथ आत्मतत्व करो विचार, विचार को ले चित्ते पावे चमत्कार, इसलिए आत्मतत्व आत्मा आत्मा क्या है शरीर क्या है ये विचार करो, यदि सही ढंग से विचार करोगे तो अच्छा जनित होगा, विचार करिवे जावे शोक नहीं रवे, आत्मा नित्यत्व जानी नित्यानंद पावे, और जब ये आत्मा के बारे ठीक से विचार करोगे तब क्या होगा शोक नहीं होगा और नित्य आनंद लाभ करोगे। लेकिन इस तरह कोई किसी किसी समझाने की कोशिश करते थे नहीं समझेगा तब क्या करेगा आदमी, एक चीज समझाने की कोशिश करे तब क्या करता है, ठीक है भाई तुम्हें समझाने में थे दूसरा उदाहरण लगाओ, अभी हो सकता किसने सोच रहा हो सकता वो जो मेरा ये चीज नहीं समझ रहा है कि वो जो ये जो बात कर रहा है, पहले बंदे मैं आत्मा को विश्वास ही नहीं करता हूँ तो इसको इतना लेक्चर तो कोई काम में लगेगा नहीं, ठीक है भाई तुम शरीर को नहीं मान आत्मा को नहीं मानते हैं, यदि ताई मानो तुम देही सर्वस्व परिचय नहीं किछु आत्मार निजस्व, ठीक है तुम यदि इस तरह बोलोगे नहीं आत्मा में नहीं मानता हूँ, आत्मा बोले कोई है नहीं ये शरीर ही सब कुछ है, नित्य जन्म नित्य मृत्यु देह मात्र है तबुओ तुम्हार दुख नहीं तबुताए, यदि तुम बोलोगे ठीक है मैं आत्मा को नहीं मानता हूँ ये शरीर सब कुछ है, ये शरीर तो किस रासायनिक पदार्थ का मिश्रण है, तो फिर ये शरीर तो यदि मरेगा जिस तरह समुद्र में भोग नामक है, फिर नामक एक एक जगह जमा हो गया दुख के कारण, फिर पानी आके फिर उसको समझ में कोई दुख करे दुख करेगा वैसे वह चले गया। तो उसी तरह यदि तुम्हें आत्मा नहीं मानोगे, शरीर सब है लेकिन शरीर सृष्टि का ध्वंस होगा, फिर सृष्टि का ध्वंस होगा, समुद्र में बहुत सारे बुलबुल फोम होते हैं, बुलबुल होते फिर धर्म। तो कोई समुद्र के किनारे जो कोई सुख करता, अरे इतना बाबल सृष्टि अभी कहा गया, फिर भी यह शोक नहीं करना चाहिए। यदि रासायनिक पदार्थों का संमिश्रण होगा, कितना सा रासायनिक पदार्थ इधर उधर घूम रहा है फिर है। तो वह से कोई तो नहीं शोक करते है। यह से हम देखते हैं उसी टाइम भी इस तरह नास्तिक पूर्वक था, आत्मा को विश्वास नहीं करे इस तरह आदमी भी था। नहीं तो कृष्ण क्यों अर्जुन किस तरह बात बोल रहा है, ये तुम नहीं मानते हो, फिर भी वो तरीका भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अर्थात किसी को हालत में अर्जुन को युद्ध कराना ही है, आत्मा चीज नहीं समझेगा तो फिर चलो छोड़ दो, फिर तो भी युद्ध करना है। जर देह उपजय अनिवार्य क्षय क्षय हुए जर देह पुनः उपजय। ये जर देह जब जर देह सृष्टि हो गया तो निश्चित रूप एक दिन ध्वंस होगा, जब ध्वंस होगा निश्चित में फिर सृष्टि होगा। जर द्रव्य रूप छाड़ी अन्य रूप है, नूतन रूपर जन्य अन्य रूप कय। एक जड़ शरीर छोड़कर दूसरा जड़ शरीर, अभी एक आदमी मर गया, कोई एक प्राणी मर गया, वो मिट्टी से मिल गया, वो मिट्टी से कोई एक दिन और एक कप बना के वहां से चाप ही रहे तो कप बोलते तो कोई पशु नहीं बोलते हैं। तो दूसरा नूतन रूप अन्य रूप का है, नया रूप धारण किया, उनका नाम भी परिवर्तन हो गया। यही जर विज्ञ ज्योति करो विचार तथापि शोकर कथा न ये तिल धार। तुम ये विचार मानोगे आत्मा बोले कुछ नहीं है, जर द्रुप इस तरह एक स्वर का दूसरा हो रहा है, तो उसके अंदर भी कुछ शोक कर रहे हैं, एक स्वर के दूसरे तो होगा ही। जरे रूपादि नाई परे थाके ना मध्य मात्र रूप गुण सकली भावना। जर वस्तु एक करतल है, पांच साल पहले इनको बनाए तो पांच साल पहले था, बीस साल पहले ध्वंस हो जाएगा तो बीस साल पहले रहेगा, तो बीस में पांच और बीस पच्चीस साल है स्थिति था, तो पहले था नहीं बाद में नहीं रहेगा, तो बीस में कुछ दिन रहा तो उसी लिए इतना क्यों आसक्ति। इसीलिए बोला ज्वरे रूपादि नहीं पर था के ना, पहले था नहीं भविष्य नहीं, तो मध्यमात्र रूप गुण सकली भावना, बीस में कुछ दिन के लिए प्रकाश हुआ। अतएव निराकार यदि निराकार ताहाते तुम्हार दुख किसेर आभार। कृष्ण कितना अच्छा दर्शन दे रहे हैं, ठीक है छोड़ दो आत्मा बोल के कुछ है नहीं, ये शरीर है सब कुछ, लेकिन शरीर पहले तो निराकार था तो बाद में निराकार होगा, तो कुछ दिन कुछ सालों के लिए आकर तो ज्यादा दिन तो निराकार था और भविष्य में निराकार होगा, तो निराकार वस्तु निराकार हो गया, तो इसके अंदर शोक किया। इसके बाद आश्चर्य आश्चर्य आत्मा रो कथा, आत्मा के बारे जितना सारे बात है सब आश्चर्य। ना बुझे जथा तथा, हमेशा ये समझ में नहीं आएगा। आश्चर्य तहार देखा सुना, उनके बारे देखना उनके बारे सुनना सब आश्चर्य। आश्चर्य केहोबा बोले, जो बोलते अब्बा क्या बोल रहा है। आश्चर्य के होबा छले, छलो ना के होबा छले, आश्चर्य क्यों आश्चर्य रूप छलना करते। आश्चर्य तहार उद्यापना, उनको विषय में जितना पढ़ाई वगैरह है उद्यापना सब पढ़ने के लिए भी आश्चर्य लगता। जिस तरह आज तक तो आत्मा समझ ज्यादा कुछ हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब पहले बार गीता पढ़ चुका वाह क्या इसको लेक्चर देंगे हाँ कितना कुछ सीख गया। जितना दिन जाएगा उतने पता चलेगा कितना कम सीखा है इसके बारे में। आश्चर्य होया सुने, जब सुनते हैं आश्चर्य होया सुने तथा भी वह नहीं माने, आश्चर्य होगा सुनने के बाद भी समझ में नहीं आते। आश्चर्य जो आश्चर्य कथा, ये आश्चर्य के बारे सारे कथा आश्चर्य है। आश्चर्य होया रहे आश्चर्य बुझी तो नहीं, आश्चर्य अति दुर्लभ होता। ये आत्मा के बारे सब कुछ आश्चर्य, इसलिए सिद्धांत तो क्या दे रहा है ये श्लोक में, 30 नंबर श्लोक में कृष्ण, 11 नंबर श्लोक से यह तक 20 श्लोक में सिद्धांत दे रहा है। सिद्धांत आत्मार कथा सुनो हे भारत, वेदांत अमार कथा सुनो से मत। हे अर्जुन, मैं एक आत्मा के बारे में सिद्धांत दे रहा हूं, ये मेरा बात नहीं है, ये वेदांत का सार है। क्या देहिनी त्म मरे नहीं सकल देहेर, देहेर विनाश तो ना ताई नहे तो शोकेर। देही अर्थात देह का जो मालिक आत्मा है वो कभी नहीं मरेगा, इसीलिए उनके लिए शोक नहीं होगा। बस ये है, ये जितना लेक्चर थे भूल जाओ, यदि यदि नहीं याद रहेगा तो कम से कम एक चीज ध्यान रखो, जो आत्मा कभी मरेगा नहीं और तुम इनके बारे शोक करना नीचे। ठीक है, ये चैप्टर क्लोज करो। तुमको आत्मा बारे नहीं समझ में आ रहा, तब प्रैक्टिकल बातें आ जाओ, माना आत्मा ये चैप्टर क्लोज करो, मैं आत्मा समझ में नहीं आ रहा है अभी, प्रैक्टिकल बात कहो। निज धर्म देखी पुनः ना हो विकल, क्षत्रिय युद्ध करा धर्म जे सकल। अभी आत्मा का तो छोड़ दो, तुम तो क्षत्रिय है, तुम्हारा काम क्या युद्ध करा। অনায়াসে পাইয়াছ স্বর্গদ্বার খোলা, সে যুদ্ধ কার্যেতে নাহি করো অবহেলা। অনায়াসে কই প্রয়াস স্বর্গে আপকো সাম এক যুদ্ধ মিল গিয়া, স্বর্গদ্বার খোলা হ্যাঁ আসানি তো স্বর্গ মে যা সকতে, আর ও যুদ্ধ মে অবহেলা করে। ভাগ্যবান বীর সেই হেন যুদ্ধ পায়, যুদ্ধ করি যোগ্য ফল ক্ষত্রিয় ল হয়। भाग्यवान व्यक्ति के सामने इस तरह युद्ध आते हैं, आज तुम इस तरह युद्ध नहीं करना चाहते हो। अतएव तुम पार्थ यदि युद्ध छाड़ो, स्वधर्म सकृति सब एकत्र उगारो। अरे हे अर्जुन, तुम यदि युद्ध छोड़ दोगे स्वधर्म सकृति सब एक साथ नाश हो जाएगा, तुम्हारा मान सम्मान सब धूलिसात हो जाएगा। তোমার অকৃতি লোক নিশ্চয় গাইবে, বাঁচিয়া মরণ তব বিঘোষিত হবে। তব ফটো অ্যাপ্রোপ্রিয়েট নিয়ে হবে, যদি তুমি যুদ্ধ ছড়োগে সব লোক তোমার নিন্দা করেনগে, আর তোমার এই নিন্দা যদি তুমি শুনোগে তোমার এই মৃত্যু সে তোমার জ্যাদা কষ্ট হবে। অর্থাৎ বাঁচা জিন্দা রাখা সে তোমার জ্যাদা কষ্ট হবে। আর মহারাজ যারা সব নিন্দা যে করিবে, ভয় পেয়ে ছাড়ে রণ তারা যে বলিবে। যারা বহুত বহুত বড় বড় বীর বলে, দেখো অর্জুন আপলোকে বীর বলতে হয়, এই তো দেওয়ার মারে যুদ্ধ সে পারে গে ফাঁকিয়া। যাহাদের গণ্য মান্য তুমি যে এখন, সকলের চক্ষে ছোট হইবে তখন। আমি সব লোক আপনার সম্মান কর রা হ্যাঁ, লেকিন সবকে সম্মান আপ ছোট হয়ে যাবে। क्या तब आप सहन कर सकते हैं बात को, कतो गाला गाली देवे अकत्य कथन, भाभी देखो तब ही की तबे तखन। जब इस तरह जब डांटे के गाली देगा कि इसको सहन कर पाओगे। निजो निंदा सुनी तुमी नीरव रहिबे, बोलो पार्थ सेई निंदा केमने सहिबे। क्या नीरव होकर इस तरह निंदा सहन कर सकते, तब तब तुम युद्ध करना पड़ेगा, तुम्हारे सामने कोई बोलेगा तो क्या करोगे। एक आचार्य ने व्याख्या किया, अर्जुन कृष्ण बोला यह नहीं, आचार्य जी व्याख्या कर रहे हैं, अर्जुन बोला मैं भीख मांगे खाऊंगा। बोला तुम भीख मांगोगे, कोई नहीं देगा उनके साथ युद्ध करोगे घर में जाके, तो स्वाभाविक शक्ति युद्ध करना, कोई किसी भीख मांगने के जाओगे नहीं देगा तो उनके साथ युद्ध लड़े करोगे, तो तुम्हारा स्वभाव है नहीं कर पाओगे। मोरे यदि स्वर्ग भाव से पाओ से ही भालो कथा, বাঁচিয়া পাইবে ভোগ নয় সে অন্যতা। আর মরনে কে বাদ যদি স্বর্গ মে যাও, যদি যুদ্ধ করোগে দোহ চিজ হয়ে যাবে, মরনে কে বাদ স্বর্গ, और जिंदा रहोगे तो यही दुनिया स्वर्ग हो। तो युद्ध करने कितना अच्छा है, मरने से स्वर्ग और जीतने से स्वर्ग सुख है दुनिया में, और युद्ध नहीं करने से नरक, और ये दुनिया में रहोगे तो नरक भोग। तो क्यों युद्ध नहीं करोगे? कितना कृष्ण कितना अच्छा तरीके समझा रहे हैं, कौन नहीं समझेगा बात को। बाचा मरा दुई भालो युद्ध युद्ध ते निश्चय हेनो युद्ध छाड़ो तुम आश्चर्य विषय। जो युद्ध करने से मरना जिंदा दोनों अच्छा है, तो तुम इस तरह युद्ध छोड़ना चाहते क्या? ये आश्चर्य की बात है। कोई बोले इस तरह नौकरी करो, अरे इस तरह नौकरी नहीं करना चाहते, आश्चर्य विषय। तो कृष्ण इस तरह क्या आश्चर्य, युद्ध नहीं करना चाहते? हे कौन ते उठो तुम्हें नहीं करो हेला, युद्ध करी बारे निश्चय करो यही वेला। हे अर्जुन अभी अवहेला मत करो, उठो अभी युद्ध करो। सुख दुख सम करो ना हानि लाभ सब, जय अजय नाही भय कर्तव्य बलिब। सुख दुख सम कर, ये युद्ध में सुख होगा कि दुख होगा ये बात भूल जाओ, तुम्हारे जय पराजय दोनों को समान रूप में लो। युद्ध लागिया तुम्हें सुयुद्ध करो, नहीं ताते पाप भय यही सत्य बरो। ठीक है, जय विजय कर बात दो, युद्ध करने के लिए युद्ध करो, क्षत्रिय के लिए तो मजा है युद्ध करना। ज्ञानेर विचारे सब बोली नु तुम्हें, अभी कर्म ज्ञान सब चलेगा। अभी कौन कौन विषय बोलेंगे? अभी भक्ति के विषय, इसलिए ये अध्याय का नाम गीता का सार, अभी भक्ति के विषय बोल रहे हैं। एवे सुनो बुद्धि जो ज्ञान परिपाके, ज्ञान जब परिपक्व हो जाएगा तब क्या करेंगे? ज्ञान जब परिपक्व तब बुद्धि सिखाओ। ज्ञानी योग्यता यदि परिपक्व है भक्ति द्वारा बुद्धि योग तब ऐसे बुझाए। ज्ञानी का ज्ञान जब परिपक्व होगा तब बुद्धि द्वारा भक्ति करते। भक्ति युक्त कर्म है कर्म योग नाम, जहारो साधने कर्म बंधन विराम। इस तरह बुद्धि युक्त होकर जो कर्म करता है उसका नाम कर्म योग, और इस तरह कर्म करने से कर्म बंधन से मुक्त हो जाता। या भी भक्ति का महत्व बोल रहा है, ये कितना महत्व है, ये जितना भक्ति है इसका क्षय व्यय कुछ नहीं। क्षय व्यय नहीं नाश से कार्य साधने, जहां पारो करे जाओ संचय ये धने। स्वल्प मात्र है यदि से धर्म साधन, महाभय होते रक्षा पाइबे तखन। ये भक्ति का क्षय व्यय नाश नहीं, थोड़ा करने से महाभय उद्धार होता है। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि हे कुरु नंदन, एकमात्र है तहा बहु ना कखन। कृष्ण भक्ति है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एकमात्र, ये बहु नहीं है। अनंत अपार से अव्यवसायी है, बहु शाखा विस्तारित के करे निर्णय। लेकिन जो अव्यवसायी है, जो कृष्ण भक्त नहीं है, उनका बहु शाखा। अब कृष्ण भक्ति करोगे जितना कुछ मिल रहा है किसके लिए? कृष्ण के लिए। लेकिन कृष्ण भक्ति नहीं करोगे ये रुपये किसके लिए, कितना प्लान करना पड़ेगा? अव्यवसायी, जो अव्यवसायी लक्षण इस तरह बोल रहा है। अव्यवसायी किस तरह? पुष्पेर साजने जथा इष्ट मिष्ट कथा, कर्मी हृदय तथा तहा करे प्रफुल्लिता। पुष्पेर साजान अर्थात फूल से सजावट। तो भौतिक जगत का जितना सारा बात है बहुत रोचक मधुर बात है, बाहर सुनने बहुत अच्छा लगता है। कर्मी का हृदय सुनकर बहुत इतना अच्छा है, कर बोल से वेदवादी सब भोगेरो कारण, जता सर्व से कथा करो ये वरण। केवल वो नहीं बोलता, एक्चुअली वेद में भी वर्णन है, इस तरह करो इस मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। इसलिए वो आदमी को पता है वेदवादी, जो वेद को कर्मकांड मानते हैं। मूर्ख से भगवादी आपात मधुर, दत्त चित्त हो जाए आसले फतुर। इस तरह भोग करने जब जाते हैं उसे सर्व शांत हो जाते हैं। कामात्मना लोक सब स्वर्ग भोग चाय, कर्म फल भोग लिप्सा आर ना बुझाए। আড়ম্বরে ভুলে যায় ভোগ ঐশ্বর্য চায়, বুদ্ধি যোগ এক লক্ষ্য তাহা না মনয়। ইস তারা ভোগ করনে কে জব যাতে হ্যাঁ কৃষ্ণ ভক্তি জীবন কাছে সর্বস্ব এ সমাজ মনকা নেই আতে। ভোগ ঐশ্বর্যে আসক্ত যে পাগলের মতো, নিজেকে হারিয়া বসে আশা শত শত। এ ভোগ বাসের নামে কে হতে হয় নিষ্কো, জিস তারা লটারি খেলে যে জিসকে হতে ও ও ভোগ করনে কে কারণ কে হতে হয় পুরা সর্বশান্ত হয়ে যেতে নিষ্কো ধ্বংস কর দিতে। তারা নাহি বুঝে ব্যবসা আত্মিকা বুদ্ধি, আসক্তি তাদের শুদ্ধ ভক্তি মুক্তি সিদ্ধি। এ লোক কৃষ্ণ ভক্তি কা মাহাত্ম্য নেই সমস্তে হ্যাঁ, এ লোক সমস্তে হ্যাঁ ভোগ করনা মুক্তি লাভ করনা আর ম্যাক্সিমাম সব যোগ সিদ্ধি প্রাপ্ত। লেকিন ভক্তি কে বারে এ লোক জ্ঞান নেই। ত্রিগুণের মধ্যে বেদ সত্য রজতম, তাহার উপরে উঠো তবে সে উত্তম। কই বল নেই তো বেদ মেলে কাহ নেই, বেদ ত্রিগুণাত্মক বেদ সে উপরে উঠা আছে। তখনই দ্বন্দ্বভাব ঘুচিবে তোমার, নিত্য শুদ্ধ সত্যভাব হবে আবিষ্কার। আত্মবান হয়ে সদা নির্যোগ নিক্ষেম, যে ধনে সে ধনী তাহা ভগবত প্রেম। ইসিলিয়ে কৃষ্ণ বলতে তুমি এ তিন গুণ সে উপর উঠ, অর্থাৎ ভগবত প্রেম লোক ধ্যান মে ধনী। তো এই অধ্যায় খতম করে কি নেই করে, আমি তো 45 শ্লোক হ্যাঁ 25 আর 27 শ্লোক হ্যাঁ তুমি গীতা খতম নেই হবা তো কঠিন শব্দ পড়কে যা রা হুম দু এক শব্দ কঠিন লাগে লিখ কে রাখ না বাদ মেয়ে পুছ না কোশ্চেন আনসার পড়কে যাতে হ্যাঁ ইসলে পড়কে যা রা সেই প্রেমে। কোন প্রেমে? কৃষ্ণ প্রেমে। সেই প্রেমে ভাসমান, ভাসমান অর্থাৎ তের রায়, সেই প্রেমে ভাসমান সর্বলাভ পায়, কূপ জল নদী জল যথা যথা হয়। এ তো লাগলো তো গীতে সবকে পাতা হয় না জাস্ট একবার পরে যায়। এক কূপে হয় এক কার্যের সাধন, নদীর জলেতে হয় একত্রে ভাজন। বেদের তাৎপর্য সেই এক লক্ষ্য হয়, ব্রাহ্মণ যে হয় সেই সমস্ত বুঝায়। এ আচ্ছা বুধান দে রায় জিসকে বার এক বহুত বার নদী হয় উনকে ছোট ছোট কুয়া খোদনে কে কে জরুরত হয়। উস তরহ জিসকে কৃষ্ণ ভক্তি প্রেম হয়, কৃষ্ণ প্রেম হয় তো উনকে ছোট 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 মোটো কর্মকাণ্ড করার জরুরত নেই। নিজ অধিকার মাত্র কর্ম করে যাও, কর্মফল নেই চাও আসক্তি ঘুচাও। কর্মফল হেতু সদা না হইবে তুমি, অনুকূল কর্ম যেই সেই কর্মভূমি। এসব তো আপ জানতে হ্যাঁ কর্মের অধিকার আসতে। যোগী হয়ে কর কর্ম আসক্তি রহিত, কিস্তার কর্ম কেনা চাই আসক্তি রহিত, আসক্তি রহিত কর্ম ভগবানে প্রীত। ধনঞ্জয় সঙ্গতেজি কর্ম করে যাও, কর্ম করো সঙ্গতেজি অর্থাৎ আসক্তি ত্যাগ কর। সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সম বৈষম্য ঘুচাও, সিদ্ধি অসিদ্ধি ভেদভাব রকম। এই সমভাব হয় যোগ সিদ্ধি নাম, সেই সিদ্ধি লাভে পূর্ণ সর্ব মনস্কাম। বুদ্ধি যোগ দ্বারা ছাড়া কর্ম অপরাধী, কাম কৃষ্ণ কর্মার্পণে না হও বিষাদী। অর্থাৎ কাম কৃষ্ণ অর্পণ করানাচ্ছি, ইয়াচে শোক নেই কানাচ্ছি, কাম কৃষ্ণ অর্পণ কর। অনুক্ষণ সেই বুদ্ধে শরণাগতি যার, কৃপণের ফল হেতু ইচ্ছা নহে তার। যে কৃপণ ব্যক্তি তারা যে কৃপণ ব্যক্তি হ্যাঁ ও ইস তারা নেই করনা চাতে। বুদ্ধিযোগ দ্বারা কর্ম সুকৃতি যে ফল, দুষ্কৃতি বা ফলে যাহা কর এ নির্মল। অতএব তুমি সেই যোগে যুদ্ধ করো, কর্মের কৌশলেই বুদ্ধি যোগ ধরো। কর্মকাণ্ড কে কৌশল কি হ্যাঁ, কর্মকাণ্ড কে কৌশল হ্যাঁ, কৃষ্ণ কিলে কর্মকাণ্ড। মনীষী যে ইসে কর্ম বুদ্ধি যোগ দ্বারা, ত্যাগেতে সমর্থ হয় কর্ম ফল সারা। জন্মবন্ধ বিনুর্মুক্ত সেই কর্মযোগী, অনাময় পদ প্রাপ্ত হয় সেই ত্যাগী। অনাময় শব্দ অর্থাৎ আময় অর্থাৎ বেমারি, অনাময় অর্থাৎ কষ্ট শূন্য। তো ভগবত ভক্ত উস তারা পদ লাভ করতে হয়। যখন তোমার মন বুদ্ধি যোগ দ্বারা, মোহরূপ কর্দমাক্ত হয়ে যাবে পারা। তখন নির্বেদ সব হয়ে যাবে কাম, শ্রুতির সতব্য তব নাহি রবে ধাম। যাক বুদ্ধি যোগ অর্থাৎ কৃষ্ণ ভক্তি লাভ করেঙ্গে, তো ভৌতিক জগৎ কা যে লাভ পূজা পুজো ও উস তারা বাতে হামকো বিভ্রান্ত নাই কর সকতে। আরে ভাই আপ নৌকরি ছোড় দিয়ে ব্রহ্মচারী বন গিয়া, দেখো তোমার ফ্রেন্ড তো ইতনা বড় আদমি বন গিয়া, ইস তার বাত শুনকে বিভ্রান্ত নেই। শ্রুতির গৃহীত জ্ঞান যখন নিশ্চলা, কর্মজ্ঞান যোগাদি তখনই সফলা। সমাধি তখন হয় কর্মযোগে স্থিতি, স্থিত প্রজ্ঞ তার নাম যোগারূঢ় গতি। ইস তারা জিতনা সারে বাতে আয়েগা, লেকিন উনকা বুদ্ধি বিভ্রম নাই হোগা, অর্থাৎ উনকা বুদ্ধি স্থির হোগে, ইসিলিয়ে উনকা প্রজ্ঞা অর্থাৎ জ্ঞান, উনকা জ্ঞান স্থির হোগে, ইসিলিয়ে উনকা নাম স্থিত প্রজ্ঞ। তো অর্জুন বললো ইস তারা হো সকতে কিয়া, তো উসকো লক্ষণ কিয়া হ্যায়, স্থিত প্রজ্ঞ লক্ষণ কিয়া হ্যায়, কিস তারা বাত করতে কিস তারা চলতে হ্যায়। তো প্রশ্ন অর্জুন প্রশ্ন করছে, কি লক্ষণ স্থিত প্রজ্ঞ, কি বা তার ভাষা, হে কেশ কহমরে সমাধিস্ত আশা। স্থিতধি কি বলে কিংবা উঠা বসা করে, কিভাবে গমন করে কহত বিস্তারে। কিস তারা প্রশ্ন কিয়া, আগে 55 শ্লোক সে 17-18 শ্লোক কৃষ্ণ নে এসে স্থিত প্রজ্ঞ কা লক্ষণ বর্ণনা কর রহে। তো হম পুরা একসাথ সব পড়নে কে বাদ একসাথ ব্যাখ্যা করেঙ্গে। শ্রী ভগবান পহলে এ তো কমন পড়েগা আপ লোক, আপ স্থিত প্রজ্ঞ দেখতে সমঝ না আয়েগা। নিজের ইন্দ্রিয় সুখে যত কাম আছে, বুদ্ধি বদ্ধ জীব মনোধর্মে ধায় পাছে পাছে। সেসব কামনাতে জি আত্ম ভগবানে, সম্বন্ধ যিনি আক্রমে হয় আগুয়ানি। তখন জানিবে তুষ্ট স্থিত প্রজ্ঞ সুখী, এছাড়া আর যে লোক সকলেই দুঃখী। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন মনা, সুখে নাহি স্পৃহা, নিজ সেবা কার্যে যার একমাত্র ইহা, ইহা তার ইচ্ছা। বিতরাগ শোক ভয় ক্রোধ নাহি যার, সেজন স্থিত ধিমুনি বিদিত সবার। সব জানতে হয় বিদিত সবার, সব জানতে হ্যাঁ উনকো স্থিত করতে। এই সারে শব্দ তো কঠিন শব্দ হ্যাঁ, দু এক 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 শ্লোক মে দু এক শব্দ হচ্ছে। দেহ স্মৃতি নাহি যার, শুভাশুভ কি বা তার। যো জানতে মে শরীর নেই হুঁ, তো শরীর সে সম্পর্কে কই মূল্য হয় কিছু কর। দেহ স্মৃতি নেই আতা, যো জানতে মে শরীর নেই হুঁ, দেহ স্মৃতি নেই যার, শুভাশুভ কি বা তার। সর্বত্র অনবিস্নেহ লোক ব্যবহার, তো কই জায়গায় আসক্তি নেই, লেকিন ফিরবি কি করতে লোক ব্যবহার। অভিনন্দ দেশ নাই সর্বহিতে রত, তাহার জানিও প্রজ্ঞা স্থির প্রতিষ্ঠিত। গোদাস ইন্দ্রিয় সুখে বিচলিত সদা, গোস্বামী হইয়াছে দীপ আত্মাতে সর্বদা। তাই সে ইন্দ্রিয় সব কুর্ম অঙ্গ মত, কুর্মথা কছুয়া, ইন্দ্রিয় ভোগার্থ সদা বিষয়ে বিরত। অতএব জানি তার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত, সেজন উপাধিমুক্ত গোস্বামী বিদিত। বিত বৈরাগ্য করিয়া হয় বিষয়ে নিবৃত্তি, তাহা নহে স্থিত প্রজ্ঞা স্বাভাবিক বৃত্তি। বৈরাগ্য কারণে সে বিষয় নিবৃত্তি নেই হতে হয়, কব হতে হয় পরমানন্দ জানি যেবা জরানন্দ ছাড়ে স্থিত প্রজ্ঞ সেই বীর বিষয়ে বিহারে। যে পরমানন্দ লাভ কিয়া তো স্থিত প্রজ্ঞ ব্যক্তি, তো বিষয়ে বিহার, বিষয় কে আন্দার ভ্রমণ করনে কে বাদ দি প্রভাবিত নেই হতে, কিউকি উনকো পরমানন্দ মিল গিয়া। আত্মারও সম্পর্ক নাই বৈরাগ্যের যতন, পণ্ডিত হলেও তার প্রশোভিত মন। যদি আত্মা আর শরীরকে পারাক নাই পারা জানা, লেকিন বৈরাগ্য করা হ্যাঁ, লেকিন ও দাদা দিন টিকে গানে গির যায়গা। উনকো কিয়া করেনগে, ইন্দ্রিয় পাগল কে তারা শক্তিশালী ইন্দ্রিয়, প্রমাথি ইন্দ্রিয়, প্রমাথি আত্মার পাগল কে তারা শক্তিশালী ইন্দ্রিয় কিয়া করেনগে, প্রমাথি ইন্দ্রিয় তাকে বিষয়েতে ফেলে শুষ্ক বৈরাগীর লাগে আগুন ও কপালে। কপালে আগুন লাগা শব্দ হিন্দি মতে কপাল অর্থাৎ ফেট ভাগ্য, কপাল অর্থাৎ ভাগ্য, ভাগ্য মানে আগুন লাগা অর্থাৎ আগ লাগে অর্থাৎ সব খতম। কৃষ্ণ সেবা যুক্ত হয় ইন্দ্রিয় সংযত, ইন্দ্রিয় যে বসায় প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত। যব কৃষ্ণ কা সেবা করেনগে অটোমেটিক ইন্দ্রিয় সংযত হয়ে যাতে, আর যা জিসকে ইন্দ্রিয় স্তর সংযত হো গিয়া উনকে কথা স্থিত প্রজ্ঞ। শুষ্ক বৈরাগ্য যে আর বিষয়েতে ধ্যান, বাহার মে শুষ্ক বৈরাগ্য করা হয় লেকিন বাহার মে শুষ্ক যদি বৈরাগ্য করেনগে আন্দামি কে হোগা আজ ধ্যান করলে ঠিক হবা, ক্রমে ক্রমে সঙ্গ সে হয় আগুয়ান, সঙ্গ ক্রমে কাম হয় কামে ক্রোধ হয়, ক্রোধে সম্মোহন পরে বিভ্রম বাড়য়, স্মৃতি ভ্রষ্ট হলে পরে বুদ্ধি নাশ হয়, বৈরাগীর সর্বনাশ সেই তো পর্যায়, পর্যায়তা ধাপ ধাপ এক এক ধাপ ইস্তারা ধীরে 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 ধীরে, ও তো ইংলিশ হয়ে গিয়া স্তর বাই স্তর, ইস্তারা এক এক ক্রমচে ইস্তারা পতন হতে। অতএব রাগ দ্বেষ নাহি যার অতি, মুক্ত যে হইয়াছে বিষয়ের গতি, চিত্ত প্রসাদে সে হয় কৃষ্ণার্পিত মন, বিষয়ে থাকিয়া তিনি জীবন মুক্ত হন, বিষয় মে রহাকার উনি জীবন মুক্ত হন। পরমানন্দ সুখ যেই প্রসাদ তার নাম, কিসকে নাম প্রসাদ হ্যাঁ, হম তো খানা কো প্রসাদ জানতে হ্যাঁ, লেকিন এ বোধ পরমানন্দ সুখ যেই প্রসাদ তার নাম, যাহার প্রাপ্তিতে দুঃখ হয় অন্তর্ধান, সে প্রসাদে প্রতিষ্ঠিত যে হয় নিশ্চিত, আত্মনিষ্ঠ বুদ্ধি যার জগতে বিদিত, জীবের স্বরূপ হয় আনন্দেতে মতি। জীবের স্বরূপ কি হয়, পয়লা কে শোনা জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস, লেকিন দুসরা সংজ্ঞা দুনো সেই জীবাত্মা কে সচিত আনন্দময়, তা আনন্দময় জীবিকা স্বরূপ নেই প্রভাত, জীবের স্বরূপ হয় আনন্দেতে মতি, বুদ্ধি যোগ বিনা তার কোথায় অবা গতি, অতএব সে ভাবনা নাহি যার স্থিতি, কোথা শান্তি তার বল সুখের প্রগতি, সুখ নেই তো শান্তি খা চায়, ইন্দ্রিয় চালিত করি মনোধর্মে স্থিতি, বায়ুর মধ্যে তো যথা নৌকার প্রগতি। এ হাওয়া মে এক নাও, নাও কা হালত কি হোগা, উসি তারা জিসকা মন কৃষ্ণ সেবা মে স্থিতি নেই হ্যাঁ, তো ইন্দ্রিয় বিষয় উনকো ইস তারা বিচলিত করে, সে নৌকা যেমন সদা টলমল করে, টলমল শব্দ হিন্দি নয়, অযুক্ত ব্যক্তির প্রজ্ঞা সেই রূপ হরে, অতএব মহাবাহ শুন মন দিয়া, আমি কে কানছি মন দেখে শুনে গেলে বললা শুনিয়ে মন দেখে আজ যা তিন চার শ্লোক হ্যাঁ, অতএব মহাবাহ শুন মন দিয়া, নিগৃহীত মন যারা মাতে সপিয়া, নিগৃহীত মন কিসকে নিয়ন্ত্রণ হোক, যে সব কিছু কৃষ্ণ কল্পনকে উনকো মন নিগৃহীত, তাহার ইন্দ্রিয় বশ মরে সমর্পিত, তাহারই প্রজ্ঞা হয় পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত, বিষয়ী বিষয়ে নিষ্ঠা করে যে প্রচুর, সর্বদা জাগ্রত সেই সদা ভরপুর, সংযমীর সেই চেষ্টা নিশার সমান, সংযমী জাগ্রত থাকে আত্মবিষয়ান, বিষয়ীর সেই আত্মা রাত্রিও সমান, উভয়ের কার্য হয় বহু ব্যবধান, সমুদ্রে নদীর জল যেমন প্রবেশে প্রবেশ, বিচলিত নহে সেই সর্ব সদা নির্বিশেষ। সমুদ্র মে যাও, নদী চলতে হ্যাঁ, নদী মে বহুত বহাও চলতে হ্যাঁ, লেকিন সমুদ্র জানে কে বাদ স্থির হয়ে যাতে। সেভাবে মনে যার কামেরও চালনা, সে শান্তি পাইবে ফল শান্তিরও সাধনা, কাম ছাড়ি সব যে বা নিস্পৃহ দিমান, কাম ছাড়ি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ভোগ করলে বাসনা সরকার কেবল শ্রীকৃষ্ণ কা সেবা করার নিকলে ধীমান অর্থাৎ ধীমান অর্থাৎ বুদ্ধিমান, ধীরত বুদ্ধি ধীমান অর্থাৎ বুদ্ধিমান। সর্বত্র ভ্রমণ করে নারদীয় গান, হরে কৃষ্ণ হরে
কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম হরে রাম 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 হরে হরে।
মমতা বিহীন আর অহংকার নাই, তার শান্তি বিনিশ্চিত সেই তো গোসাই, তিনি ও ব্যক্তি গোস্বামী, সেই সে স্মৃতির নাম ব্রাহ্মী স্থিতি হয়, যার প্রাপ্তি হয় তার মোহন কোথায়, সেই স্থিতি যদি হয় মরণেরও কালে, ব্রাহ্মী স্থিতি ভাব নহে কালেরও কবলে। ইস্তারা যে ভাবনা স্থিতি প্রাপ্ত হতে হয় উসকে কথা ব্রাহ্মী স্থিতি, যব এই ব্রাহ্মী স্থিতি ব্রহ্মী স্থিতি হতে হয় তব উনকো মোহ প্রাপ্ত হলে কা কই সম্ভাবনা নেই, কম সে কম যদি মৃত্যুকে সময় বিয়ে হয়ে যায় ফিরবি জীবন সফল। ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গান, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। শ্রী ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ এ আশা করকে ভগবদ গীতা কা গান লিখ রা হয় তাকে শুদ্ধ কৃষ্ণগত প্রাণ বৈষ্ণব ইসকো গায়েঙ্গে শুনেঙ্গে শুনে যদি শুদ্ধ কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ। কই প্রশ্ন হ্যাঁ সারাই তো প্রশ্ন কোন সা প্রশ্ন জি
প্রশ্ন কৃষ্ণ ভক্তি হতে ছোড় পা তো কিস প্রকার ছোড় সকতে
প্রভাত কৃষ্ণ গীতা নে যত পরমানন্দ কৃষ্ণ সেবা কা আনন্দ জব নেই মিলা তব তক নেই ছাড় পাঙ্গে। জিস তরহ মান লিজিয়ে হাম জব চলতে হ্যাঁ না, এক পেড় মিট্টি মে লাগনে বা দূসরা পেড় উঠাতে হ্যায়, এক কীড়া জব চলতে হয় তো এক পাত্র মে জানে দূসরা পেড় উঠাতে হ্যায়, উসে যত তক পরমানন্দ প্রাপ্ত নেই হওয়া তব তক জড়ানন্দ ছোড় নেই সকতে। ইসিলিয়ে কৃষ্ণ সেবা কা আনন্দ প্রাপ্ত করা বহুত জরুরি হ্যায়, কৃষ্ণ সেবা কা প্রাপ্ত আনন্দ প্রাপ্ত হয়েছে তো আসানি সে জড়ানন্দ ত্যাগ কর। প্রভাত দোনো বাত কে না, অর্জুন শুদ্ধ ভক্ত থে লেকিন কৃষ্ণ উনকো মোহিত কর দিয়ে তাকে উনকো জব মোহিত হোক ভগবত গীতা প্রশ্ন পুছেগা তো উত্তর দেয়েঙ্গে, জব আপকো ক্যা দে হ্যাঁ মে জানতা হুঁ হ্যাঁ হ্যাঁ মে জানতা হুঁ তো আপকো বললে মজা লাগেগা, হ্যাঁ হ্যাঁ উসকে বাদ কিয়া হুয়া মে তো শুনে পহলে বার শুনা বই কই গে তো আপকো বললে কেসে লাগেগা, তো উসি তরহ অর্জুন মোহ পড়েছে তো কৃষ্ণ কে বললে মজা লাগেগা।
धन्यवाद महाराज। महाराज हम आत्मा के विषय में ये जो कथा आपने की है पूरा पढ़ा, ये बहुत बार सुना है, बट वो रियलाइजेशन नहीं आ पाता कि हम ये शरीर नहीं हम आत्मा है, इस रियलाइजेशन तक हम कैसे पहुंचे?
भगवान गुरु के पास प्रार्थना करना चाहिए, एक दिन होगा कुछ तो हो सकते, ज्यादा कुछ थोड़ा तो कुछ हुआ, नहीं तो इस चीज क्यों कर रहे हैं आप? यदि कुछ नहीं मिला है तो यह बैठ के रह सकते, दूसरे के ऑफिस में जाकर काम करो, दो घंटे काम करो, कुछ तो पैसा मिलता था, यह क्या मिल रहा है? क्लास के बाद प्रसाद तक नहीं मिलेगा। आपको व्हाट्सएप मैसेज मिला है पता नहीं, फिर भी आया।
ये प्रसाद
परमानंद परमानंद सुखदेव प्रसाद तार नाम आज प्रमाण हो गया आप लोग। ठीक है ये रखते हैं, अब लोग आने के पहले हम 12 अध्याय इसीलिए क्लास पंद्रह पहले शुरू किया है, इसलिए कीर्तन पाठ हम पहले कर चुका है गीता का, इसलिए अभी आप कीर्तन नहीं करेंगे। हरे कृष्ण प्रभुपाद की
जय,
गीता ज्ञान की जय, सांग योग भक्त की जय,
गौत श्री श्री भक्ति प्रेम साईं महाराज की
जय,
प्रभुपाद की
जय। मेरा एक अनुरोध है, आप सब लोग नोट खाता वगैरह कुछ लेके आइए, कम से कम दो चार कुछ शब्द लिखिए, इस तरह नहीं हर चीज हमारे पास जानते हैं, इस तरह तो चैलेंज में दे सकते, हर चीज आपको जानने वाला नहीं है, कम से कम बांग्ला भाषा तो आपको जानकारी इस तरह बहुत कुछ सीखने का है, कम से कम कुछ तो
नोट खाता में लिख सकते,
बहुत कुछ सीखने का है, साथ में बहुत कुछ सीखना है आपसे मत करना।